चार यौन संदर्भों की कहानियाँ। राकेश की कहानियों का चौथा वर्ग है जिनमें गुनाह बेलज्जत, आखिरी सामान, वासना की छाया में, उर्मिल जीवन, शिकार, फटा हुआ जूता, पांचवें माले का फ्लैट और सेफ्टी पिन आदि प्रमुख हैं। राकेश की कहानियों के इस वर्गीकरण के बाद डॉक्टर सिन्हा ने लिखा है कि अपनी अनुभूतियों को लेकर जो कहानियां राकेश ने लिखी हैं वे अधिक महत्वपूर्ण बन गई हैं। इनमें सुहागिने और एक और जिंदगी उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः राकेश की कहानियों का यह वर्गीकरण भी उचित प्रतीत नहीं होता है। कारण यह है कि डॉक्टर सिन्हा ने जो वर्ग निर्धारित किए हैं वे सभी कहानीकार के ऊपर लागू किए जा सकते हैं। साथ ही इन वर्गों में रखी गई कहानियों में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिन्हें किसी दूसरे वर्ग में भी आसानी से रखा जा सकता है। उदाहरणार्थ यौन संदर्भों से युक्त कहानियों को ही लीजिए। ये वे कहानियां हैं जिनमें व्यक्ति का अकेलापन, उसकी मानसिकता बोझिलता, विडंबना और महानगरीय जीवन की भयावहता को व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इन कहानियों में व्यक्ति के माध्यम से महानगरीय सभ्यता से उत्पन्न भयावहता के संकेत मिलते हैं, किंतु इतने पर भी इनका केंद्र बिंदु व्यक्ति न होकर उसके आसपास का संतरास है, संतप्त और यातनाग्रस्त जीवन है। ऐसी स्थिति में इस विभाजन का क्या औचित्य रह जाता है? फिर सेफ्टी पिन कहानी यदि राकेश की प्रयोगशीलता को उजागर करती है तो पांचवें माले का फ्लैट तो महानगरीय संतरास को व्यक्त करती हुई टूटे हुए पुरुष की कहानी है। पृष्ठ 62। इसी प्रकार डॉक्टर सिन्हा ने जटिल और पेचीदा कहानियों में ग्लास टैंक, फौलाद का आकाश और जख्म को रखा, वहां तक तो ठीक है, किंतु जानवर और जानवर कहानी में यह सब कहाँ है, कैसे है? हाँ, जटिल और पेचीदगी भरी कहानियां राकेश ने लिखी तो हैं, क्योंकि उनकी प्रयोगशील वृत्ति ने उनसे ऐसी कहानियां लिखा ली हैं, किंतु जानवर और जानवर को इस वर्ग में घसीटने का औचित्य समझ में नहीं आता है। यह कहानी उस दौर की है जिसमें उसकी रोटी, मंदी और मलबे का मालिक लिखी गई है। इस कहानी में यथार्थ का तीखा स्वर है, एक तरह की कड़वाहट है और है परिवेश से जुड़े रहने की अनिवार्यता। ध्यातव्य यह है कि यहाँ राकेश परिवेश से जुड़ने की अनिवार्यता से मुक्ति पाने को लालायित नहीं है, अपितु तात्कालिक शर्तों के अस्वीकार बोध के साथ साथ जुड़े रहने के सार्थक बिंदुओं के अन्वेषण में रत दिखाई देते हैं। कहानी के पात्र पीटर, पाल, आंट सैली और अनीता सभी पादरी के परिवेश से जुड़कर भी उससे अलग होने के उतने अभिलाषी नहीं हैं जितने कि उस परिवेश को अस्वीकारते हुए सार्थक बिंदुओं की तलाश के लिए बेचैन हैं। यों यह कहानी उन पात्रों की है जो आर्थिक अभावों के कारण विवशता व पीड़ा सह रहे हैं। हाँ, इतना सब सहकर भी एक जिजीविषा उनमें है जिसके आधार पर यह कहानी सार्थक बिंदुओं की तलाश के लिए बेचैन है। पाल का यह कथन कहानी में निरूपित यथार्थ संदर्भ की व्यंगात्मक मुद्रा को प्रतीकार्षित शैली में व्यक्त कर देता है। मेरा मतलब है पादरी कि रात को हम गरीब जानवरों को गोली मारते हैं और सुबह गिरजे में उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका कुछ मतलब निकलता है? इस पर पादरी का यह कहना कि मतलब निकलता है और वह यह कि हर जानवर एक सा नहीं होता, जानवर जानवर में फर्क होता है। कहानी निरूपित यथार्थ परिदृश्य की तलखी को और अधिक कटुता प्रदान कर देता है। नतीजा यह कि यथार्थ परिवेश को निरूपित करने वाली कहानी है। इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। इसके संदर्भ, स्थितियां और पात्रों के साथ आए कुछ प्रतीक आदि सभी स्पष्ट और व्यंजक हैं। यहां इस विवेचन का तात्पर्य केवल इतना ही था कि डॉक्टर सिन्हा द्वारा किया गया राकेश की कहानियों का वर्गीकरण भी अनुपयुक्त है, एक पक्षीय है, उसे निरापद नहीं कहा जा सकता है। यों राकेश ने अपने पांचों कहानी संग्रहों को पृष्ठ 63 जब चार जिल्दों में बांधा तो एक प्रकार से अपनी कहानियों में निरूपित स्थितियों, प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के आधार पर उनका वर्गीकरण भी स्वयं ही कर दिया। यदि उनके चार संग्रहों आज के साए, रोए रेशे, एक एक दुनिया और मिले जुले चेहरे में चयनित और संग्रहित कहानियों को देखें तो प्रत्येक में एक जैसी या उसी की मूल संवेदना से मिलती जुलती कहानियों को स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उनकी कहानियों के चार वर्ग स्वतः ही बन जाते हैं। प्रथम, समकालीन परिस्थितियों में जूझते पिटते व्यक्तियों की कहानियां, जिनमें सामाजिक जीवन का यथार्थ प्रतिबिंबित है। द्वितीय, मानव संबंधों को सूक्ष्मता से व्यक्त करने वाली अनुभूति प्रवण कहानियां। तृतीय, व्यक्ति व्यक्ति के अकेलेपन के बोध की प्रतिरूपक कहानियां, जिनमें उसकी ऊब, उदासी, नीरस जिंदगी और पीड़ा कथा चित्रित है। चतुर्थ, नए पुराने संबंधों को निरूपित करने वाली ये कहानियां, जिनमें परिवेश से संबद्ध व्यक्ति को उसके समस्त अंतर्विरोधों और असंगतियों के साथ आकार प्राप्त हुआ है। इस वर्ग की कहानियों के मूल्यों का बदलाव सामाजिक और पारिवारिक पीठिका पर अभिव्यक्त हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राकेश की कहानियों का यही मूल स्वर है। इसमें प्रायः सभी प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कर दिया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए और कहानी में निरूपित मूल संवेदना के औचित्यपूर्ण अभिव्यंजन के लिए मेरी दृष्टि में राकेश की कहानियों को निम्नांकित वर्गों में रखकर समीक्षित परीक्षित किया जा सकता है। हाँ, मेरा यह दावा तो नहीं कि इससे अच्छा और कोई अन्य वर्गीकरण नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य है कि इससे राकेश की कहानियों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। वर्गीकरण इस प्रकार है। एक, सामाजिक जीवन के यथार्थ की प्रतिबोधक कहानियां। द्वितीय, सूक्ष्म मानव संबंधों पर आधारित कहानियां। तृतीय, स्त्री पुरुष की टूटन और अकेलेपन के बोध की कहानियां। चतुर्थ, महानगरीय संतरास और भयावहता से संबद्ध कहानियां। पंचम, विभाजन और पारिवारिक विघटन की कहानियां। षष्ठ, मनोवैज्ञानिक संदर्भों में लिखी गई कहानियां। सप्तम, प्रयोग की भूमिका पर लिखी गई शैल्पिक रचाव की कहानियां। पृष्ठ 64, निश्चय ही यह वर्गीकरण कथ्य के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम को स्वीकार करके किया गया वर्गीकरण राकेश की कहानियों की मूल प्रवृत्तियों से परिचित नहीं करा सकता है। आगे इसी वर्गीकरण के आधार पर राकेश की कहानियों की विवेचना की जा रही है। विवेचन। राकेश की मनोरचना मध्यवर्गीय चेतना से संबद्ध है। उनके जीवन में आई स्थितियों परिस्थितियों की टकराहट, अनुभव और अनुभूतियां सबकी सब मध्यवर्गीय संस्कारों को निरूपित करती है। उनकी कहानियों में अनुभव की निजता है, किंतु वह परिवेश बद्ध होकर निरंतर सामाजिक भूमिका पर उतरती गई है। आधुनिक कहानीकारों में राकेश ही एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने जीवन को वास्तव को अपने स्तर पर भोग कर कहानियों के शिल्प में ढाल दिया है। जीवन का यथार्थ शरबत नहीं, कुनेन की वह गोली है, जिसे अनुभव की जुबान पर रखें तो वह तो कड़वी हो ही जाती है, उसे अभिव्यक्ति देने वाली शैली भी उससे अप्रभावित नहीं रह सकती है। यथार्थ की यह कड़वाहट कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप से राकेश की कहानियों में मिल ही जाती है। कुछ समीक्षकों की मान्यता है कि राकेश के लेखन में अनुभव का अपनापन भले ही हो और गहरा हो, किंतु वह व्यापक नहीं है। यह उनके प्रगतिशील चिंतन की महत्वपूर्ण सीमा है। यायावरी जीवन को जीकर भी उन्होंने एक ठहरा हुआ चाकू जैसी एकाध कहानियों को छोड़कर जीवन को व्यापक संदर्भों में नहीं उठाया है। अपने मुताबिक कुछ नुक्ते उठाए हैं जो मनुष्योचित सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एक, जीवन के व्यापक संदर्भों के अभाव की शिकायत राकेश की कहानियों के संदर्भ से डॉक्टर नामवर सिंह को भी रही है। इसी कारण उन्होंने लिखा है कि अपने आसपास के वातावरण में उड़ती हुई कहानियों को पकड़कर निस्संदेह मोहन राकेश ने उन्हें उतनी ही तेजी के साथ व्यक्त किया है जो मन में एक फ्लैश की तरह कौंध जाती है। लगता है उन्होंने अभी बिजली की कौंध ही पकड़ी है। बिजली की वह शक्ति नहीं पकड़ी जिसका उपयोग हम अपनी सीमा में उष्णता तथा आलोक के लिए कर सकें, जो कि मनुष्योचित सामर्थ्य का प्रतीक है। दो, नोट एक, डॉक्टर लक्ष्मण दत्त गौतम, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में प्रगति चेतना, पृष्ठ 454। दो, डॉक्टर नामवर सिंह, कहानी नई कहानी, पृष्ठ 36। यह तो ठीक है कि राकेश की कहानियों में उनके आसपास का परिवेश प्रतिबिंबित है, किंतु जब हम यह मान लेते हैं कि अनुभव का प्रत्येक क्षण जीवन में हर बार कुछ, पृष्ठ 65, नया जोड़ देता है, तो जो कलाकार अपने परिवेश के हर परिवर्तित क्षण के मुहाने पर सतर्क हो, उसके लेखन में व्यापकता के अभाव की शिकायत हठ धर्मिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यूं भी बिजली की कौंध में यदि परिवेश को तीव्रता से उजागर करने की क्षमता है, तो फिर उसके अभाव को शिकायत उस कहानीकार की कहानियों में कैसी की जा सकती है जो हर अनुभूत क्षण में एक कहानी कसमसाती हुई देखता हो। मेरी दृष्टि में राकेश की कहानियों में परिवर्तित परिस्थितियों, बदले हुए परिवेश में सांस लेते व्यक्ति के संबंधों, एक विशेष व्यवस्था में बंधे रहने की अनिवार्यता को ढोते जाने की विडंबना और महानगरीय संतरास की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। उनकी कहानियां उनके कहानी लेखन के प्रारंभिक वर्षों से लेखन के चरमोत्कर्ष तक के परिवेश को कलात्मक अनविति के साथ प्रस्तुत करती है। अतः मैं सोचती हूँ कि राकेश की कहानियों की उपलब्धि काल सापेक्ष है। मेरी इस मान्यता की पुष्टि राकेश के इन शब्दों से हो सकती है, मेरे लिए नई कहानी की दृष्टि अपने संदर्भों में रहकर उनके अंदर से अपने समय और परिवेश को आंकने की दृष्टि है, जो हर बार हर नए प्रयोग में यथार्थ को उसकी सजीवता में व्यक्त करने की एक नई कोशिश करती है। स्पष्ट है कि राकेश का कहानी लेखन परिवेश के यथार्थ से पुष्ट और परिवर्तित परिस्थितियों में विकसित नए मूल्यों और मानवीय संबंधों का लेखन है।